ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिके ग्रत्रा श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 33 और 34। तो 33 का तात्पर्य नहीं है, उसे हम पढ़ते हैं, कि 34 का उच्चारण करेंगे। वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमाने अतिविह्वलः गोत्रलीला तपत्रेण त्रातो भद्रान गृह्णतः। हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मुसलाधार वर्षा की। इस तरह गौओं की भूमि ब्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे। किंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। श्लोक संख्या 34 जो बोर्ड में लिखा है। शरद शशि करे वृष्टाम मानयन रजनी मुखाम गायन कलपदम रे मे श्रीनामंडल मंडनः। शरद शशि करे वृष्टाम मानयन रजनी मुखाम गायन कलपदम रे मे श्रीनामंडल मंडनः। शरद शशि करे वृष्टाम मानयन रजनी मुखाम गायन कलपदम रे मे श्रीनामंडल मंडनम्। शरद शशि करे नमस्कार। शरद शरद कालीन शशि चंद्रमा की करे किरणों से मृष्टां चमकीला मानयान सोचते हुए रजनी मुखां रात का मुख गायान गाते हुए कलपदां मनोहर गीत प्रेमे विहार किया श्रीनाम श्रियों का मंडल मंडनः। श्रियों की सभा के मुख्य आकर्षण के रूप में अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिए। वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ विहार किया। तात्पर्य, गवों की भूमि वृंदावन छोड़ने के पूर्व भगवान ने अपने युवा सखियों अर्थात दिव्य गोपियों को अपनी रास लीला द्वारा आनंदित किया। यहाँ पर उद्धव ने भगवान के कार्यों का वर्णन करना रोक दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का स्मरण नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यह अध्याय यहाँ विराम देता है। ओम ज्ञान तिमिरान्नश ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरौ श्रीतापदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतां परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज धनवंतरी प्रभु का क्लास था लेकिन मुझे देना पड़ रहा है। तो ये जो अध्याय है जिसका श्रवण हम करते आए हैं और शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जो जिज्ञासा है उसका शमन करने के लिए विदुर और उद्धव का जो वार्तालाप है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो हम हर प्रवचनों में सुनते आए हैं कि किस प्रकार से दो महान विभूतियों का मिलन होता है। कौन है दो महान विभूति? एक साक्षात भगवान के नित्य परिकर उद्धव हैं और दूसरे कृष्ण की शिक्षाओं को आगे पहुंचाने वाले जो 12 महाजन हैं, महाजनों जेन गतासपन्तः, कि भगवत भक्ति का संपादन तभी सफल होता है जब हम महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं या अनुगमन करते हैं। तो ऐसे 12 महाजनों में यमराज हैं, तो वही विदुर के रूप में आते हैं और विदुर भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। हम कई बार सुनते हैं कि दुर्योधन के घर का मेवा छोड़कर भगवान विदुर के घर की शाख या फिर केले की छिलके खाने के लिए भाग जाते हैं। तो जब ये दोनों भक्त तो आप सोचो कि दो महान भक्त आपस में मिलते हैं तो कितना आनंद अनुभव करते होंगे एक दूसरे से चर्चा करके। जब हम एक दूसरे भक्त से मिलते हैं तो भागना चाहते हैं। जब वो भक्त प्रजल्पना ना करे, निंदा चुगली ना करे तो हमें आनंद नहीं आता। उसके संग में क्या नहीं होता? आनंद की अनुभूति नहीं होती। यह हमारा दुर्भाग्य है। तो लेकिन यहां तीर्थ यात्रा का प्रयोजन क्या है? साधु संग प्राप्त करना, यही केवल तीर्थ यात्रा का फल है। तीर्थों में भ्रमण करने का एकमेव फल है कि ऐसे भक्त को मिलना कि जिसका हृदय कृष्ण भावना से पूरित है, कृष्ण भक्ति से भरा हुआ है, और उसका संग लाभ करना ही सबसे बड़ा जीवन में अचीवमेंट है। या कोई व्यक्ति बहुत अधिक भाग्यशाली है, ये कैसे नापा जा सकता है कि उस व्यक्ति को किसका संग प्राप्त हो रहा है? इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि इस संसार में जो लोग मर्त्य लोक हैं, इस जगत का नाम क्या है? मर्त्य लोक। तो तो इन मर्त्य लोक में रहने वाले निवासियों के लिए है सबसे बड़ा आशीष, आशीष का मतलब है आशीर्वाद या वर या लाभ क्या हो सकता है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस मर्त्य लोक में निवास करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा लाभ है, हे कृष्णा आपके प्रिय भक्तों का साहचार्य या संग प्राप्त होना, इससे बढ़कर लाभ इस संसार में नहीं है, क्योंकि ऐसे संग में ही जीवन की सर्व सिद्धि छुपी हुई है। इसलिए हमें किसी चीज की कामना करनी है, किसी चीज की प्रार्थना करनी है कृष्ण से, तो एक ही कामना या एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, तांदेरा चरण सेवे भक्त सने वास, जनमे जनमे हाय यही अभिलाष, कि हे कृष्णा मुझे ये सामर्थ्य दो कि आपके जो प्रिय भक्त हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनके चरण कमलों की मैं सेवा करता रहूं, और मुझे कहां निवास करने की इच्छा है, आपके जो भगवत भक्त हैं, उनके संग में मैं निवास करना चाहता हूं, एक जन्म के लिए नहीं, हम इसी जन्म में इतने परेशान हैं भक्तों के बीच में रह के, सोचते कैसे छुट्टी मिल जाए, रोज ही उन्हीं भक्तों का मुंह देखने को मिलता है, हाँ तो परेशान, अंदर से तो परेशान है, दुखी है, लेकिन बोलेंगे किसे, सहन कर रहे हैं, मतलब संग को हम सहन करना पड़ रहा है, तो हमारी इतनी दुर्दशा है, हम आनंदित नहीं हो रहे हैं, लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। प्रभुपाद कहते हैं हाँ, जैसे खटमल, मैं व्यास आसन में बैठा हुआ और खटमल भी व्यास आसन में है, तो उससे क्या उसको लाभ मिलेगा, या फिर शास्त्र कहते हैं कि ऐसे जो दो भगवत भक्त, प्रेमी भगवत भक्त मिलते हैं विदुर और उद्धव जैसे, तो उन दोनों के मिलाप में कृष्ण भावना बहने लगती है, जैसे विदुर मिले उद्धव को, उद्धव का कृष्ण भावना का बैग भरा हुआ था, आप देखो कोई बैग बहुत भरा होता है, जो जो दूध का बैग है प्लास्टिक ऊपर से बांधा है, पूरा टाइट है, फुल है, और वहां जाकर आप क्या करो, हाथ में सुई लेके जाओ, थोड़ा सा उसको वो करो, क्या होगा, जोर जोर से बहने लगेगा। तो उसी प्रकार से भगवत भक्त का मतलब है कि जो कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं से भरा हुआ है, उसको छोड़े मात्र से उसके हृदय से, उसके मुख से कृष्ण भावना बहने लगती है, क्या कहने लगती है, बहने लगती है। ये उद्धव को तो ये बहाना था, विदुर उनके पास गए और उन्होंने जस्ट केवल यही पूछा कि आप बताओ वहां के निवासी कैसे, हस्तिनापुर के द्वारका वासी आदि आदि, जब पूछा तो जैसे ये प्रश्न पूछा तो कृष्ण के लिए इतना अधिक प्रेम उनके हृदय में था उद्धव के, कि उद्धव के उद्धव शांत हो गए और चिंतन करने लगे, और उनके मुख से कृष्ण भक्ति की ये जो धारा है, कृष्ण लीलाएं हैं, वो बहने लगी। यही एक उन्नत भक्त का लक्षण है। उन्नत भक्त का लक्षण क्या है, कि वो सदैव कृष्ण का गुणगान करना चाहता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति भाव के लक्षण में है या भाव के धरातल पर है, तो उसके पास छह लक्षण उन्होंने बताए हैं, उसमें से एक लक्षण क्या है, अव्यर्थ कालत्वम, वो जो भक्त है अपना समय कभी भी व्यर्थ गवाता नहीं है। हमारे पास समय इतना होता है उसका सदुपयोग हमें करना नहीं आता। तो यहां भाव के धरातल पर जो भक्त है उसका एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम, वो अपने काल अपने समय को एक क्षण भी व्यर्थ गवाता नहीं, क्योंकि वो जानता है, क्या जानता है, कि करोड़ों करोड़ों रुपए भी मैं दे दूं तो भी बीता हुआ कल या बीता हुआ सेकंड या घंटा वापस मेरे जीवन में नहीं आ सकता। इसलिए शुकदेव गोस्वामी जब भागवत कथा शुरू करते हैं तो जो भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहा है उसका गुणगान करते हैं, वो कहते हैं कि उद्यान अस्तंच यन असो, कि जो व्यक्ति कृष्ण की महिमा को निरंतर सुनने में लगा है, सूर्य उसकी आयु को खत्म नहीं कर सकता, वो वास्तव में शाश्वत रूप से जीवित है। लेकिन जो व्यक्ति आपने सदा एक समय का दुरुपयोग कर रहा है, कृष्ण कथा आदि को नहीं श्रवण कर रहा है, तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की आयु सूर्य क्या कर रहा है, दिन ब दिन कम कर रहा है, घटा रहा है। तो इसलिए सबसे अधिक चिंता करनी चाहिए सबसे पहले हमें अपने आध्यात्मिक जीवन की, फिर दूसरों की चिंता करनी चाहिए। अपना आध्यात्मिक जीवन, प्रभुपाद ने कहा सेल्फ रियलाइजेशन, सब हाईएस्ट रियलाइजेशन क्या है, सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाओ। अपने आप को बचाने का मतलब क्या है, अपनी चेतना की रक्षा करो। अभी अपने आप को बचाने का मतलब हम सोच सकते हैं कि मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल हट्टा कट्टा बना रहूंगा, लेकिन चेतना की ऐसे की तैसे, चेतना, ये जो चेतना है इतनी गंदी हो जाती है, पूरे दिन में दूसरे दिन की सुबह होने तक कई प्रकार के गुणों से ये गुजरती है, और हम भूल भी जाते हैं कि ये कृष्ण चेतना के लिए मैं यहाँ प्रवेश, इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में मैंने प्रवेश लिया है। हम पूरे दिन में चेतना में माया को बिठाते हैं, और उस माया जब चेतना में बैठती है तो हमें जो आनंद उससे मिलता है, वो आनंद कृष्ण भावना से भी नहीं मिलता। ये बद्ध जीव का एक लक्षण है। तो इस प्रकार से जो उन्नत भक्त है वो अपना जो समय है उसका दुरुपयोग नहीं करता, वो समय को चुराता है और उसका इस्तेमाल कृष्ण के स्मरण को बढ़ाने में करता है। अल्टीमेटली सारे नियमों का पालन कर रहे हैं हम, उन सारे नियमों का पालन करने का अंतिम गंतव्य क्या है, Always remember Krishna, never forget Krishna. कि कृष्ण का सदैव स्मरण करना और कृष्ण को कभी नहीं भूलना। यदि हम अपने आप को थोड़ा सा झांक ले अपने हृदय में, तो हम सोचे कि मैं कितना पूरे दिन में कितना कृष्ण का स्मरण करता हूँ, कितना व्हाट्सएप का स्मरण करता हूँ, कितना फेसबुक का स्मरण करता हूँ, या कितना माया का स्मरण करता हूँ, और बचा कुचा समय कोई भक्त याद दिलाए तब हमें कौन स्मरण आते हैं, कृष्ण स्मरण आते हैं, जो वास्तव में प्रातः स्मरणीय है। कृष्ण क्या है, प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, ऐसे कृष्ण को हम, कृष्ण का हम स्मरण नहीं करना चाहते। और उन्नत भक्त का दूसरा लक्षण क्या है, नाम गाने सदा रुचि। रुचि किसमें है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं का अपने जीवा से सदैव वो गान करना चाहता है। उसकी जीवा, उसकी जो टंग है वो वाइब्रेट करती रहती है, सदैव वो बोलती रहती है। किसके बारे में बोलती है, कृष्ण के बारे में बोलती है। एक महान वैष्णवी हुई जिनका नाम था कृष्ण प्रिया ठाकुरानी, अरे बहुत बड़े भक्त थे, राधाकुंड में निवास कर रहे थे, भागवत के प्रवक्ता, भागवत उनके कंठ में निवास कर रहा था, जैसे शिव जी के कंठ में विष निवास करता है ना, निवास करता है नीलकंठ। तो ये जो भागवत प्रवक्ता थे उनके कंठ में भागवतम निवास कर रहा था, इतने नॉलेजेबल, इतने ज्ञाता, प्रखंड विद्वान, और वो भागवतम का जब प्रवचन देते थे तो बहुत सारे ब्रज के, राधाकुंड के निवासी बैठते थे, और ये सिंपल सरल हृदय वाली जो श्री थी माता जी कृष्ण प्रिया ठाकुरानी, वो सबसे पीछे बैठते थे, पीछे नहीं बीच में बैठती होगी। तो जब वो बैठते थे, लेकिन उसकी एक समस्या क्या थी कि वो अपने जिह्वा को कभी कंट्रोल नहीं कर सकती। आप कहोगे जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर सकती मीन्स क्या, वो खाती रहती थी क्या, हमें अपने जिह्वा का, जिह्वा से परेशान है, हमेशा कुछ ना कुछ, बकरी की तरह जिह्वा हमेशा चरना चाहती है, कुछ ना कुछ खाना चाहती है। हाई साइज कितना उसका, कुछ इंच की है, उसको कोई हड्डी नहीं है, लेकिन बहुत पावरफुल है। मैं एक चीज पढ़ रहा था जिसमें हाँ, ये दांत और जीवा का कन्वर्सेशन हो रहा था, संवाद हो रहा था आपस में। और दांत, दांत तो इतने सारे हैं, हाँ, संग में शक्ति है कि नहीं। वो कहते हैं कि जीवा, वो दांत कहते हैं कि क्यों बीच बीच में हाँ लड़खड़ाती हो, हम सब तुम्हें पकड़ के तोड़ डाल देंगे, हाँ इतने शक्तिशाली हैं हम। कौन कह रहे हैं? दांत। लेकिन जीवा कहती है कि मैं तो एक ही बार चलूंगी तो आप 32 के 32 का हो जाओगे, बाहर आ जाओगे। तो जीवा वेगम रूप गोस्वामी कहते हैं कि जीव को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, इसलिए हम सारी बाकी इंद्रियों को वश में कर सकते सरलता से, लेकिन जीव बड़ी कठिन है। एक तो लप लप बोलती रहती है मेंढक की तरह, ट्राउ ट्राउ करती है, और दूसरा रस को ढूंढती है, रस का आस्वादन करना चाहती है, अलग अलग रसों को पीना चाहती है, चखना चाहती है। तो ऐसी जो जीवा है, जो हाँ वो जो कृष्ण प्रिया ठाकुरानी थी, उसको कंट्रोल नहीं हो रही थी। मतलब किस चीज के लिए, वो जो माता जी थे वो निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी जीवा तब कैसे तो चलती है जब हाथ बेड बैग में घुसता है, थोड़ी देर में वो भी बंद हो जाती है कि नहीं। लेकिन वो ऐसी स्त्री थी, उसको बिड़बैग की आवश्यकता नहीं थी। जो नाम नहीं निकलता जिनके जीवा से, उनके लिए ये माला और थैली है ना। निरंतर जो जीवा से नाम निकल रहा है, उनको बाहरी किसी चीज पर उनका भक्ति निर्भर नहीं है। हमारा भक्ति निर्भर है हाँ फैन के ऊपर। कूलर नहीं चलेगा तो भक्ति नहीं कर सकता, लाइट चले गई तो हम मंगल आरती नहीं आ सकते है कि नहीं। गैस नहीं है तो प्रसाद भगवान के लिए कुक नहीं हो सकता। लेट नाइट को मैं आया तो मैं कल पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में ऑफ। तो हमारा जो भक्ति है वो हमेशा दूसरे चीज पर निर्भर है। तो इससे समझना चाहिए कि हम कितने निम्न धरातल पर है। तो जो उन्नत भक्त है उनका भगवत भजन किसी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं होता, वो स्वतंत्र है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किस पर निर्भर नहीं है। तो ऐसी वो कृष्ण प्रिया ठाकुरानी जब उस प्रवचन में थी और उसकी जीवा 24 घंटे सो भी रही है तो भी क्या करती है, नाम उच्चारण करती है। तो जब वो प्रवचन में बैठती थी तो उस समय उसकी जीवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण करती रहती थी। मतलब चलता रहता, ऐसे नहीं कि वो जानबूझ के दिखा रही है कि देखो मैं कौन हूँ, कितनी अच्छी भक्त हूँ, मैं इतना नाम मेरे जीवा से निकल रहा है। नहीं, उसके लिए इतना स्वाभाविक हो गया था कि उसकी जीवा नाम बोलती रहती थी। तो ये जो प्रवक्ता थे कविराज, जिनको गुस्सा आया, अरे कैसी स्त्री हो, प्रवचन हो रहा है बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, उठो भागो यहां से। तो बेचारी बड़ी विनम्र थी वो, और अपने जीवा को कंट्रोल, वो प्रॉब्लम उसका नहीं था। प्रॉब्लम क्या था, निरंतर कृष्ण नाम ले रहे थे, स्वाभाविक था। तो जैसे इन्होंने डांटा तो हुआ क्या, ये जो बड़े प्रवक्ता थे उनका भजन छूट गया। हाँ, वही अपराध, एक तो वैष्णव अपराध, दूसरा है वैष्णवी अपराध। तो हम क्या करते हैं, अपने साधन भजन को बहुत ढीले ले लेते हैं, और थोड़े दिन हमने कुछ श्रवण कीर्तन नहीं किया, छोटी मोटी सेवाएं नहीं की, तो अहंकार का गुब्बारा फूलने लगता है। वैसे ही कॉलर शर्ट को ऐड करने की हमारी आदत रहती है, उससे और टाइट हो जाते हैं, उसमें कुछ थोड़ी चीजें हासिल करते हैं भगवत भक्ति में तो और अहंकार का गुब्बारा बढ़ता है। अब ये प्रवक्ता इतने प्रवचन दिए थे, वो इतने वाक्पटु थे, गंगा की धारा के तरह वो बोला करते थे, चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे, और जैसे उन्होंने उनके प्रति अपराध किया वो बेचारे कैसे तो उठी दो तीन बार, और वो निरंतर एक कोने में जाकर अपना नाम कीर्तन करने लगे। और देखा गया कि ये जो कविराज थे इनको कुष्ठ रोग हो गया, इनका भगवत भजन खत्म हो गया, इनके हृदय में स्त्री के लिए और धन के लिए आकर्षण जागृत हो गया। वैष्णव अपराध का रिजल्ट क्या है? अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, स्त्री है तो स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष है तो पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण और धन के प्रति आकर्षण। तो ये मीन्स भोग करने की भावना इन एक शब्द में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्नत भक्त का लक्षण है नाम गाने सदा रुचि, तो उसका रुचि हमेशा रहता है भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करने में, वो कभी थकता नहीं है, आघाता नहीं है। जैसे परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज थके नहीं, उनके अंदर इतना उत्साह था, उन्होंने कहा शुकदेव गोस्वामी आप निरंतर बोलते रहो और मैं इस कृष्ण कथामृत का पान करना चाहता हूं। और परीक्षित महाराज इतने विनम्र थे कि उन्होंने भागवतम के दशम स्कंध के शुरुआत में ही कहा निवृत्त तर्षेर उपगीय माना भवौषधि स्तोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा विना पशुकनाथ। वो कहते हैं कि ये जो कृष्ण कथा है जिसको सुनने के लिए व्यक्ति को सदैव तत्पर होना चाहिए, और जो व्यक्ति भगवत चर्चा को सुनने के लिए उत्साहित नहीं है, हम सोचते अरे अभी तो 8 बज गए ना, चलो ना वो बैठ के मृदंग गा के बजा के तो पीटता रहेगा प्रवक्ता, प्लस वो जो प्रवक जो यहाँ क्लास देता है उसी की चिंता है उसे कि आज मुझे अपना क्लास देना है। बल्कि श्रवण तभी इफेक्टिव होता है जब हम वक्ता से पहले आकर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। तो मतलब तब हम लाभ प्राप्त करते हैं। शुकदेव गोस्वामी पहले नहीं आए थे, कौन पहले पहुंचा था? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने सब चीजों से छुट्टी ले ली। अभी हम भागवतम शुरू होता है तभी बाथरूम आ जाती है, तभी सारे फोन आ जाते हैं, तभी अपडेट्स करने होते हैं, तभी शरीर थक जाता है, तभी भूख लग जाती है, सारे बहाने तभी होते हैं जब भागवतम क्लास शुरू होनी होती है। तो ये माया का प्रभाव है। बल्कि हमें सिंसियरली यदि हम अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं और कृष्ण के प्रति रियली आकर्षित होना चाहते हैं तो हमें अपने स्वतः के जीवन में लागू करना चाहिए कि भागवतम सुनने के लिए हमें परम उत्साहित होना चाहिए। उत्साह का लक्षण क्या है कि वक्ता से पहले श्रोता। जैसे भूख लगती है तो उसका लक्षण क्या है, प्रसाद आने से पहले जो भूख लगने वाले लाइन में बैठ जाते हैं, तो सेम चीज है। तो हमें कोई भूख नहीं लगी है तो शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं निवृत्त तर्षेर उपगीय माना भवौषधि स्तोत्र मनोभिरामा। वो कहते हैं कि कृष्ण कथा की 3 विशेषताएं हैं, बल्कि आज के श्लोक में उद्धव जी बता रहे हैं, वृंदावन की लीला का एंड कर रहे हैं। आज के श्लोक में क्या कर रहे हैं, वृंदावन लीला का वर्णन वोवर। अभी कल से लीलाएं शुरू होगी मथुरा, मतलब ब्रज के बाहर की लीलाओं का वर्णन वो कल से करेंगे। आज तक उद्धव ने ब्रज लीलाओं का गान किया, मतलब उद्धव इतने निमग्न हो गए थे कृष्ण की लीलाओं में कि क्योंकि जैसे आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हो, जिससे बहुत अधिक आसक्त हो, उस व्यक्ति का नाम भी कोई लेता है तो उसके बारे में आप सब कुछ बोलना शुरू कर देते हो। ये प्रेम का लक्षण है। एक किस चीज का लक्षण है, प्रेम या आसक्ति का लक्षण है। आप चाहे किसी से आसक्त हो गए हो तो उस चीज के बारे में कोई व्यक्ति थोड़ा सा छेड़ेगा तो आपके मुख से धारा बहने लगेगी, आप उस व्यक्ति के बारे में बोलना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप आसक्त हो। जैसे कोई आप किसी के पुत्र के बारे में बोलो, उनके माता पिता हैं, तो आप थोड़ा बोलते कि नहीं, तो माता पिता कंटिन्यूसली अपने बच्चे का गुणगान गाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उतने अटैच्ड है। बच्चे ने यहाँ सुख करने गया था, वहां स्कूल में गया था, वहां ये कर दिया, सारा सब कुछ सुनाएंगे। तो वैसे ही उद्धव को जैसे ये चीजें पूछे, तो उद्धव के मुख से तुरंत ही कृष्ण की लीलाओं का वर्णन निकलने लगा। और वास्तव में हमारा हृदय कृष्ण के कार्यकलापों से भरना चाहिए। हम बहुत अधिक दुर्भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण लीला का भंडार हमें दे दिया है। हम यदि अपने सौभाग्य का सौभाग्य के बारे में सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि विश्व में हमसे अधिक सौभाग्यशाली कोई है ही नहीं। हाँ, अब देखो, हमसे अधिक भाग्यवान इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। देवतागण बेचारे जब सुखदेव गोस्वामी प्रवचन देना शुरू कर रहे थे परीक्षित महाराज को, तब एक अमृत का घड़ा लेके आ गए सुखदेव गोस्वामी के पास, पुराणों में कथा वर्णित है, और कहा, सुखदेव गोस्वामी हमें तो आप कृष्ण कथा सुनाओ, ये जो परीक्षित है इसको मरने से बचाना है, नहीं अमृत का घड़ा पिला, लेकिन हमें क्या दे दो, कृष्ण कथा अमृत। तो उन्होंने कहा नहीं, कृष्ण कथा सुनने की योग्यता तो परीक्षित ही रखता है, आप लोग नहीं, और कृष्ण कथा को बेचा नहीं जा सकता। हाँ, वो कहते ठीक है, अच्छा रेट मिल रहा है भागवत कथा का, अच्छा रेट में। अभी कोई कहे कहा है 10 लोगों को कथा कर रहे, रोज 8 बजे हमारे वहां हो, 50,000-10,000 रुपए देते, वहां 1 घंटा कथा करके हमारे घर में आ जाओ, हम कहे अच्छा बेस्ट है। या कहा लोग 8:15-8 बजे पहुंचते हैं, कहा इनको कथा सुनाने, वहा रेट अच्छा मिल रहा है। तो देवतागण भी लेके आए थे, क्या लेके आए थे, अमृत। तो उन्होंने कहा नहीं, योग्यता इनमें है। फिर परीक्षित महाराज को वो कृष्ण कथा को सुनाते हैं। तो ऐसे उद्धव ये कृष्ण कथा को सुनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं, और सुनने के लिए भी विदुर बहुत अधिक उत्साहित हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये एक विशेषता है भक्तों की, उन्नत भक्तों की ये विशेषता है कि वो भक्त जब आपस में मिलते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यं, वो क्या करते हैं, नित्य मेरी कथा का वर्णन करते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, और इसमें रममान होते हैं, इसमें आनंद देते हैं। अभी हम आनंद ढूंढते बाकी चीजों में, भगवत कथा के अलावा माया कथा जो है वो हमें अच्छी लगती है, वो जितना सुनाते जाओ उतना हमें आनंद का वर्धन होता है माया की कथा। हाँ, क्योंकि हम माया में इंद्रिय भोग में डूबना चाहते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज दशम स्कंध की शुरुआत में कृष्ण कथा की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग हैं वो कृष्ण कथा को सुनते नहीं है, और वो वास्तव में कौन है, आत्मा का हनन करने वाले। पहला वो कहते हैं अपशुग्ना। अपशुग्न का मतलब है संस्कृत में आत्मा को अपशु कहा जाता है। तो जो व्यक्ति वास्तव में अपने आत्मा की हत्या करना चाहता है, जिसको आत्मा हत्या कहा गया है, जो अपने आत्मा का हत्यारा है, वो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहता, वो कृष्ण कथा के लिए बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बैठेगा तो 10 स्थान चेंज करेगा। वक्ता देखते प्रभु जी तो अभी यहाँ थे, कहाँ वहां चले गए, यहाँ कहाँ आ गए, नहीं तो ये मूविंग ये प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जहां बैठ, ऐसे हुआ नहीं कि परीक्षित महाराज बैठ गए, सुखदेव गोस्वामी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके वर्णन करते जा रहे थे, देखा कि परीक्षित कहाँ चला गया, ऐसे तो नहीं हुआ। तो हमें कलयुग में एक ही चीज हम करें, गंभीरता से श्रवण करें। प्रभुपाद का कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद कन्वर्सेशन में कहते हैं किसी ने पूछा ये श्रवण इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रभुपाद का श्रवण से ही सिद्धि है, श्रवण ही कलियुगा में सिद्धि देने वाला है, और ये श्रवण करने करते रहने से क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कृष्ण की कथाओं के प्रति कृष्ण के प्रति कब आसक्त हो गए, कब आपको कृष्ण से प्रीति उत्पन्न हो गई ये आपको पता नहीं चलेगा। जैसे बच्चे को माँ दवाई खिलाती है ना, थोड़ा सा स्वीट डाल के पानी डाल के, तो कब वो बच्चा पी भी लिया दवाई, मीठा मीठा सोचते सोचते पता भी नहीं चला, फिर दवाई काम करती है। तो उसी प्रकार से ये श्रवण है, तो जो आत्मा का हनन करने वाला व्यक्ति है वो कभी कृष्ण कथा को सुनना नहीं चाहेगा। और दूसरा पशुघ्न, हाँ ये शब्द यूज करते, पशुघ्न का मतलब है जो व्यक्ति कर्मकांडीय कार्यों में अधिकतर लिप्त है, कर्मकांड ज्ञानकांड केवल विषय भाण, तो अमृत बलिया जेवा खाय, इसको कोई व्यक्ति अमृत सोच के इसका आस्वादन करता है तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो ये जो कर्मकांडी लोग हैं जो कई प्रकार के यज्ञ हवन आदि करते हैं, नाना प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं, अपने मन गणन तरीकों से कई सारे व्रत विधि विधान नियम आदि उपवास का पालन करते हैं, ये कर्मकांडीय लोग भी कभी कृष्ण कथा को नहीं सुनेंगे। और ये लोग क्या करते हैं, यज्ञ आदि में पशुओं की आहुति देते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं, ये लोग भी कभी कृष्ण कथा को सुनने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। और तीसरा व्यक्ति कौन है, परीक्षित महाराज कहते हैं कसाई। तीसरा कौन है, कसाई। कसाई जो बकरे के गले को काटेगा, भैंस गाय आदि को काट के बेचेगा, मारेगा, खाएगा, पकाएगा, हाँ ये सारे लोग कसाई हैं। हाँ तो ऐसा कसाई भी निर्दयी है, वो भी भगवत कथा को सुनना नहीं चाहेगा। तो ऐसे तीन प्रकार के लोग को आत्मघाती कहा गया है, आत्मा हत्यारा कहा गया है भागवतम में। तो इस प्रकार से, और तीन प्रकार के लोग सुनना नहीं चाहते, और तीन प्रकार की विशेषता है। पहले विशेषता क्या है, निवृत्त तर्शेर उपगीयमाना, कि ये कृष्ण कथा जो निवृत्त तर्शेर है, मतलब तृष्णा से जो निवृत्त हुए हैं, ऐसे लोग कृष्ण कथा को सुनते हैं। हाँ, तृष्णा क्या है, हमें विषयों को भोगने की तृष्णा है। जिनके हृदय में विषय भोगों की तृष्णा खत्म हो गई है, या जो विषय वासनाओं से विषय भोगों से पूर्ण रूपेण निवृत्त हो गए हैं, वे केवल सदा सदा के लिए कृष्ण कथा सुनते हैं। वो कभी आघाते नहीं है, वो कभी बोर नहीं होते हैं, वो सदैव आनंदित होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को ये जो पांच विषय हैं, शब्द रूप रस गंध आदि, कभी आकृष्ट करते नहीं है, वो कभी आकृष्ट नहीं हो सकते हैं इन पांच विषयों के प्रति, और ये विषय भोग उनको अपनी ओर खींच नहीं पाते। हाँ, जैसे इस संसार में लोग सर्वसाधारण रूप से विषयों के प्रति आकृष्ट हैं, पुरुष स्त्री के प्रति आकृष्ट है, स्त्री पुरुष के प्रति आकृष्ट है, या फिर दूसरा धरातल क्या है, स्वर्ग सुख चाहता है। हाँ, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशंति, कर्म कांड के द्वारा क्या चाहते हैं हम, स्वर्ग सुख, जहां अमृत का उपभोग करना चाहते हैं, वहां बुढ़ापा नहीं है, जन्म नहीं है, स्वर्ग में जन्म लेता है तो युवा अवस्था में, वहां ऐसे नहीं कि बच्चे ने जन्म ले लिया, नहीं, वहां तो युवा अवस्था ही जन्म है, तो ऐसा उपभोग करना चाहता है। तो जो व्यक्ति निवृत्त तृष्ण है, तृष्णा से रहित है इस संसारिक, वो व्यक्ति इस भौतिक जगत के सुख के प्रति भी आकृष्ट नहीं होता। इतना ही नहीं, स्वर्ग का सुख भी उसे आकृष्ट करने का या खींचने का सामर्थ्य नहीं रखता, और ये इंद्रिय भोग
से वो पूर्ण रूप से निर्लिप्त रहता है, दूर रहता है। इंद्रिय भोग इस प्रकार से प्यास के समान है, जैसे हमें प्यास लगती है, प्यास लगती है थोड़ा पीते हैं ठीक हो गया, थोड़ी देर में फिर से क्या हो जाती है प्यास लग जाती है। तो इंद्रिय भोग वैसे ही है, थोड़े समय के लिए इंद्रिय भोग किया, फिर क्या है हृदय में और मन में, क्योंकि ये मन का एक पागलपन है, मन ने जिस चीज का पहले उपभोग किया है, जो आनंद लिया है, मन फिर से उसी को करना चाहता है, उसी में रममान होना चाहता है, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो इस भौतिक कामनाओं से मुक्त है, जो जीव जो सदा सदा चाहता है कृष्ण कथा को सुनना चाहता है, और ये इंद्रिय भोग की प्यास उसे कभी सताती नहीं है, जैसे शुक्रदेव गोस्वामी है, हरिदास ठाकुर है, अम्बरीश महाराज है, छह गोस्वामी है, श्रील प्रभुपाद आदि आचार्य है, इन सबको इंद्रिय भोग की जो तृष्णा है, ये प्यास है, कभी आकृष्ट नहीं करती। तो ये प्यास इतनी शक्तिशाली है कि हम सब लोग उससे कष्ट प्राप्त करते हैं, और इसलिए वो कहते हैं निवृत्त तर्शेर उपगीय माना। उपगीय माना का मतलब है कि ऐसे जो उन्नत भक्त कृष्ण कथा को ही अपना गंतव्य या कृष्ण कथा को ही अपना पुरुषार्थ मानते हैं कि इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, यही मेरा जीवन है, इस प्रकार से उन उन्नत भक्तों के हृदय में इवन मुक्ति प्राप्त करने की कामना भी नहीं होती। सिद्धियां तो दूर, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकल अशान। तो जो ये निवृत्त तर्श व्यक्ति है वो ना मुक्ति की ना भुक्ति की ना सिद्धि की कामना करता है, और वो सदैव कृष्ण कथा में रममान रहता है। और इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं श्रोत्र मनोभिरामा, ये कृष्ण कथा क्या है, मन और कान को बहुत अधिक आनंद देने वाली है। हम आनंद ढूंढते हैं संसारिक सुख में, संसारिक सुख हमें हम आनंद ढूंढते हैं, और लेकिन उससे बढ़कर आनंद किसमें है, यदि हम गंभीरता से कृष्ण की लीलाओं को समझते हैं। अभी तो हम ऊपर ही ऊपर इसे पढ़ लेते हैं कि चलो मैंने रीडिंग कर लिया कृष्णा बुक, आप जानते हो मैंने कितने बुक्स पढ़े हैं, मैंने कृष्णा बुक तो ऐसे पढ़ लिया, 15 दिन में छुट्टी कृष्णा बुक की। तो हम कृष्ण लीला को बहुत साधारण लेते हैं, मन तभी तक विषय भोगों से अलिप्त नहीं होगा जब हम इस कृष्ण लीला में डूबना नहीं चाहेंगे। हमें डूबने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद और इन आचार्यों ने इतना मेहनत करके इन ग्रंथों को लिखा है और इतना अमेजिंगली कृष्ण को प्रस्तुत किया है, यदि हम अपने मन को सही रूप से उसमें लगाते हैं, जो हमने पढ़ा है समझा है बारंबार उसको स्मरण करते रहते हैं, ओ क्या क्या था कृष्ण बुक के पहले अध्याय में, पृथ्वी देवी किस प्रकार से ब्रह्मा को अप्रोच करती है, क्यों अप्रोच करती है, ब्रह्मा क्यों क्षीर सागर के तट पर अकेले क्यों नहीं जाते, देवताओं को लेके क्यों जाते हैं, इस प्रकार से हर चीज का हम मनन करने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा बुद्धि कृष्ण लीला में क्या हो रहा है, दिन ब दिन डूबते जा रहा है, डूबते जा रहा है। फिर विषय भोग में सामर्थ्य नहीं है हमें आकृष्ट करने का, मन जाना भी चाहे तो भी नहीं जाएगा। इसलिए यमुनाचार्य कहते हैं कि जैसे ही मुझे भौतिक भोग या विषय भोग का स्मरण भी आता है तो मेरा मन क्या करता है, उस पर थूक पड़ता है। इसका मतलब कितना उनका मन और हृदय कृष्ण की कथाओं में कृष्ण की लीलाओं में डूबा हुआ है, और इसी कारण से कृष्ण ने यह विषय हमें दिया है। कौन सा विषय है ये, कृष्ण भक्ति या उनके लीला चरित्र का ये जो विषय है। तो ये जो कृष्ण कथा है जो अतुलनीय है, और एक भक्त को गंभीरता से उसको पढ़ना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। और उद्धव इस श्लोक में केवल इस आखिरी श्लोक में कहते हैं कि हे विदुर, जो भगवान कृष्ण है उन्होंने गोवर्धन आदि धारण करने के उपरांत जो तीसरा ऋतु है शरद, शरद बहुत सुहावना होता है, सबको आनंद देने वाला है, मनुष्यों से लेकर पशु पक्षियों को भी शरद ऋतु आनंद प्रदान करने वाला है। तो ऐसे शरद ऋतु में भगवान ने क्या किया, गोपियों को अपने सौंदर्य आदि से, सौंदर्य और माधुर्य से अपनी ओर आकृष्ट किया। तो गोपियों को आकृष्ट करने वाले भगवान कौन है, गोपीनाथ है। कौन है, गोपीनाथ। श्रीमान रास रसारंभे वंशी बटा तटस्थितः कर्षन मेनु स्वनेर गोपीर गोपीनाथ श्रेयस्तुनः। कर्षन मेनु, उन्होंने अपने वेणु का वादन किया बंसी वट में, जो केशी घाट के पास है, वहां उन्होंने भगवान संध्या के समय में बंसी वट में अपने वेणु को, वेणु का वादन करते हैं और ब्रज के सारी गोपिकाओं को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और आकृष्ट करके दिव्य लीलाओं का आनंद उठाते हैं। शरद ऋतु की जो रात्रि है उसमें भगवान रास क्रीड़ा करते हैं और इसके द्वारा मतलब उद्धव कहते हैं कि वृंदावन को छोड़ने के पूर्व ये रास क्रीड़ा भगवान की महत्वपूर्ण लीला है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्वालिफाइड व्यक्ति के द्वारा यदि कोई व्यक्ति राधा कृष्ण और गोपियों के संग में कृष्ण के जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करता है तो उस व्यक्ति के हृदय में जो काम वासना रूपी रोग है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद मद्रास में थे तो एक मद्रास में एक परिवार के घर में वहां रुके थे तो वो जो पति पत्नी शाम के समय में प्रभुपाद के पास आए मिस्टर बालू, उन्होंने कहा स्वामी जी आप हमें राधा कृष्ण गोपियों की रास लीला का बारे में सुनाइए। प्रभुपाद ने कहा देखो मैं योग्य नहीं हूं उस लीला कथा का वर्णन करने के लिए, तो आप सुनने के लिए योग्य हो सकते हैं लेकिन मैं उसका वर्णन करने के लिए योग्य नहीं हूं। एक बार नहीं, प्रभुपाद के पास वो दो तीन बार आए और प्रभुपाद ने सेम वही वर्णन, वही उत्तर दिया। वास्तव में आजकल के जो लोग हैं ये राधा कृष्ण और गोपियों की लीलाओं को बहुत हल्का ले लेते हैं, इसलिए सबसे पहले कृष्ण तत्व को समझना होगा तब वास्तव में हम राधा कृष्ण और गोपियों के साथ उनके कार्यकलापों को हम समझ सकते हैं। तो इसलिए एक भक्त को सरलता से इन कृष्ण कथा या कृष्ण लीलाओं को उन्नत आचार्य या भक्तों के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान गोपियों को आकृष्ट करते हैं और अपनी रास क्रीड़ा करते हैं। तो वास्तव में भगवान का भजन करने की जो प्रोसेस है वो कौन सी है, गोपियों ने जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा की वही विधि हम सबको सीखनी है या वही विधि हम सबको अपनानी है। चैतन्य महाप्रभु को पूछा या चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि हमारा सिद्धांत क्या है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावन, कि हम आराधना किसकी करते हैं तो वो कौन है, ब्रजेश तनया, तनय मतलब बालक, ब्रज ईश, ब्रज मीन्स वृंदावन, ईश का मतलब है स्वामी या कंट्रोलर, तो ब्रज के ईश कौन है, नंद महाराज, और उनके पुत्र कौन है, कृष्ण है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम, तो हम भगवान कृष्ण की आराधना करते जो हमारे परम आराधनीय है उतनी ही मात्रा में उनका जो धाम है वो भी हमारे लिए आराधनीय है। कृष्ण और कृष्ण के धाम में कोई अंतर नहीं है। कल मैं एक पुराण पढ़ रहा था जिसमें वर्णन आ रहा था उद्धव, सूत गोस्वामी स्वयं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कृष्ण का धाम साक्षात कृष्ण के समान है और मतलब वो धाम कृष्ण का अंग ही है और सारे ब्रजवासी कृष्ण के अंग पर क्या है, विराजमान है। मतलब ब्रज में ऐसी कोई भी स्थली नहीं है जहां कृष्ण ने अपने रहस्यमय क्रीड़ाएं, रहस्यमय लीलाएं नहीं की हो। तो इस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गे कल्पिता, कि ये जो रम्या है ब्रज वधु है, गोपिकाओं ने जिस प्रकार से उस परम आराधनीय कृष्ण की आराधना की, जो विधि उन्होंने अपनाई वो विधि किसकी है? हमारी है। मतलब हम गोपियों के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और उस मात्रा में शरणागति, उस मात्रा में निमग्नता हमारी होनी चाहिए। गोपियां कितनी निमग्न थी, ऐसे नहीं कि वो ड्रीम है, वो चीज हमें करने के लिए यहाँ हमें बिठाया है, उस इतने अधिक लीन होने के लिए हमें बिठाया है इस कृष्ण भावना में। और गुरु हमेशा अपने शिष्य से ये आशा करते हैं कि ये जो मेरा शिष्य है कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में निमग्न हो जाए। महाप्रभु को जब उनको हरि नाम दिया उनके गुरु ने, और वो हरि नाम का जप करने लगे और एक दिन सोचने लगे मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, गुरु जी के पास जाता हूँ। उन्होंने कहा गुरु जी हाँ किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बल जपिते जपिते करी न पागल, कैसे मंत्र दिया ये जब जैसे जैसे जब करता हूं मेरा पागलपन बढ़ते जा रहा है, मेरा मान मेरा हृदय कृष्ण की ओर आकृष्ट हो रहा है, पिघल रहा है। तो गुरु देखकर कृष्णदास कविराज कहते हैं उनके गुरु देखकर मन न मन मुस्कान करने लगे, हंसने लगे, वाह मेरा शिष्य तो सही हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, सही हो रहा है, यही मैं चाहता हूं। गुरु शिष्य से इस प्रकार जब देखते कि शिष्य का हृदय शुद्ध हो रहा है, शिष्य कृष्ण की ओर आकृष्ट हो रहा है, गुरु इससे सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद वहां लिखते हैं गुरु कोई लाइफ मेंबर बनाने से प्रसन्न नहीं होते, या कि आपने बहुत कुछ कर लिया उससे प्रसन्न नहीं होंगे, हाँ उससे होंगे ही होंगे, लेकिन आंतरिक आपका हृदय क्या कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रहा है या नहीं, ये सबसे मूलभूत है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि गोपियों ने जो हमें प्रोसेस सिखाई है उस प्रोसेस को हमें अपनाना चाहिए। रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गे नमा कल्पिता, और कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम इसका प्रमाण है। ये जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं ये कहां से? श्रीमद् भागवतम से। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम ये कृष्ण से अभिन्न है और श्रीमद् भागवतम को हमें कुछ हल्का नहीं लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम को हमें हर रोज पढ़ना चाहिए। मतलब कृष्ण आपके लिए प्रकट हो गए हैं, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञाना दिवि सहा, कृष्ण अपने धाम में चले गए लेकिन कृष्ण ने अपने आप को इसमें रख के गए हैं। उद्धव भगवान की रानी उनको कहते हैं कुसुम सरोवर में कि कृष्ण तो भागवतम की भागवतम में है, तो क्या हम कृष्ण का संग करने की कामना करते हैं? कितने महीने कितने दिन में कितनी बार भागवत का स्पर्श करते हैं? दिन में आधा घंटा श्रवण करने का मौका मिलता है, उसमें भी हम आनाकानी करते हैं, उसमें भी हमारा पागल मन इंद्रिय भोग की ओर आकृष्ट करता है और वो कृष्ण कथा भागवत श्रवण नहीं करना चाहता, और दिन में भागवतम की तो याद ही नहीं आती। भागवत नाम का कोई ग्रंथ भी है, दूसरे दिन जब भागवत क्लास किसकी अनाउंस होती है तब याद आता है कि भागवत नाम का ग्रंथ अस्तित्व में है। तो हमें एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हम भागवतम का स्पर्श ना करें, भागवतम को भागवतम का सेवन ना करें। भागवतम की सर्वोत्कृष्ट सेवा है उसका सेवन करना, क्या करना? उसका आस्वादन करना, उसका पान करना। भागवतम को पढ़ना ही भागवतम की सर्वोत्कृष्ट सेवा है, और इसलिए प्रभुपाद ने यह भागवतम दिया है। वास्तव में हम अपने जीवन से रजोगुण और तमोगुण को लात मार के खदेड़ना चाहते हैं तो हमें किसको पकड़ना होगा? भागवतम को। और जो व्यक्ति भागवतम को नहीं पकड़ता वास्तव में रजो और तमोगुण ने उस व्यक्ति को बहुत प्रगाढ़ आलिंगन कर लिया है। रजोगुण का मतलब है लस्ट और भौतिक भोग की इच्छा, काम वासना और भोग करने की इच्छा, और तमोगुण का मतलब है निद्रा आलस और कोई अचेत मूर्छित अवस्था, किसी का भाड़ी नहीं है संसार में क्या हो रहा है, खुद का भजन भी भूल जाता है, तमोगुण में व्यक्ति। तो रज और तमोगुण हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। हम अपने आप को सोचते ये भक्त मेरा शत्रु है, इसने मुझे प्रसाद नहीं दिया, महाप्रसाद की प्लेट बना किया, ये मेरा शत्रु है। असली शत्रु कौन है हमारे जीवन में? रजो और तमोगुण। प्रभुपाद ने कहा एक भक्त को रजोगुण और तमोगुण में रहने में आनंदित नहीं होना चाहिए, उससे भागने का प्रयास करना चाहिए। कैसे ये रजो तमोगुण मेरे पीछे लगे हुए हैं, उसको सदैव सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। और सतोगुण आने का सबसे प्रभावशाली पावरफुल इंस्ट्रूमेंट कोई है तो प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम में, वो है श्रीमद् भागवतम। तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्चये, कि तदा रजस्तमो भावा काम लोभ, काम और लोभ ये रज और तमोगुण का लक्षण है। तो ये भागवतम को नित्य उसका सेवन करने से, उसको पढ़ने से हमारे हृदय से रजोगुण तमोगुण की भावना दूर भाग जाती है और सतोगुण का विकास होता है। और हम देखते हैं कि अरे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का स्मरण हो रहा है, आज मुझे इतना कूल कूल क्यों लग रहा है। लोग कहते ना कूल, ये प्रभुपाद के समय में एक सिगरेट हुआ करते थे। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते कि देखो वो एडवर्टाइज आते थे और जिसमें दिखाया जाता था, बिल बोर्ड में भी लिखा जाता था, एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और लिखा हुआ है कूल कूल कूल, बहुत कूल है। प्रभुपाद कहते देखो रास्कल, वो आग पी रहा है और कह रहा है कूल कूल कूल। तो वैसे ही है, लाइफ कूल करना है तो क्या करो, भागवतम को पकड़ो, भागवतम को आपका मित्र बनाओ। इस संसार के संबंध थोड़े दिन के लिए है, बनेंगे, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, टूट जाएंगे। सांसारिक संबंध हमेशा स्वार्थ पर टिके हुए हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कई श्लोक लिखे हैं भागवतम के गुणगान में। उन्होंने कहा मद एक बंधु मद संगी, हाँ मद गुरु मद आश्रया, कहते मेरा एक संगी कोई है भागवतम, मेरा मित्र कोई है भागवतम, मेरा गुरु कोई है भागवतम, मैं किसकी शरणागत में हूं तो कौन है भागवतम। तो सनातन गोस्वामी भागवतम से सर्वाधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनको स्वप्न में एक ब्राह्मण आया, एक कृष्ण आया जो भागवतम की कॉपी देखे गए। सुबह वो जल्दी उठे, दरवाजा खोल के देखते तो एक ब्राह्मण बाहर खड़ा है भागवतम के ग्रंथ लेके, एक बुक उनको दे रहा है। सनातन गोस्वामी ने उसका आलिंगन किया, कभी छोड़ा नहीं हमारे। अरे इसलिए कलयुग में यही संप्रदाय में भागवतम की प्रमुखता है। भागवतम में कृष्ण नाम भी है, कृष्ण रूप भी है, कृष्ण गुण भी है, कृष्ण लीलाएं भी है। इसलिए भागवतम और प्रभुपाद ने सबसे अधिक समय किसी ग्रंथ को दिया तो वो भागवतम को था। भागवतम में सर्वाधिक प्रवचन दिए, भागवतम को सबसे ज्यादा टाइम अनुवाद करने में दिया। मतलब ये आंदोलन शुरू करने से पहले कोई प्रभुपाद ने ग्रंथ अनुवाद करना शुरू किया था तो वो भागवतम था। और मृत्यु के एंड में डिक्टाफोन से अनुवाद कर रहे थे किसी ग्रंथ का तो वो कौन सा था, भागवतम। तो भागवतम लाइफ है। भगवत गीता शुरुआत का अध्ययन है। भगवत गीता बताता है कि आप भगवान स्वामी हैं और आप दास हो या आप सेवक हो, लेकिन उसके आगे क्या है, कैसे सेवा करनी, कैसे अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करना, वो सारी शिक्षा भागवतम में है। इसलिए भागवतम में विशेष रूप से दो चीजों का ज्ञान है, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध ज्ञान भगवत गीता में है। क्या है संबंध, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हाँ तो लेकिन अधिक मात्रा में भागवतम प्रमुख है, इसलिए प्रभुपाद ने भागवतम कक्षा इंट्रोड्यूस की है भक्तों के लिए। सुबह के समय किसके लिए, भक्तों के लिए जो भगवत भक्ति में बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए भागवतम को गंभीरता से हम ले अपने स्वयं के जीवन में भी, और जिनसे भी हम मिलते हैं उनको भी प्रेरित करें। और उद्धव भी क्या कर रहे हैं, उद्धव भागवतम का गुणगान कर रहे हैं। भागवतम क्या है, कृष्ण लीला है। तो उद्धव ये वर्णन कर रहे हैं, उद्धव
जैसे प्रिया डिवोटी कोई और नहीं है, बल्कि आज मैं सोच रहा था उद्धव का जीवन चरित्र सुनाऊं, लेकिन मैं सुना नहीं पाया। तो उद्धव का जीवन चरित्र अमेजिंग है, कैसे उनका जन्म से लेकर हाँ कृष्ण आखिरी में किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो वो कौन थे? उद्धव। और क्या कहते हैं उद्धव, जाओ हाँ ये शिक्षा दे दो बद्रिकाश्रम में। तो बद्रिकाश्रम में उद्धव निवास कर रहे थे, हाँ तो वहां जो भी आता था बद्रिकाश्रम में उनको कृष्ण कथा सुनाते थे। और फिर फाइनली उद्धव वैसे निवास करते कहा ब्रज में कुसुम सरोवर के पास, हाँ जो सखी स्थली है वहा उद्धव का शाश्वत निवास है, लता पताओं के रूप में, लता के रूप में। हाँ कोई पूछता है उद्धव आप लता के रूप में क्यों निवास कर रहे हो ब्रज में, तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए ब्रज में निवास कर रहा हूँ लताओं के रूप में कि ये जो गोपिकाज है उनके चरणों की धूली मेरे सर पर पड़े, हाँ तो मेरा जीवन धन्य हो सकता है। हाँ तो यही कामना है, और वही कामना चैतन्य महाप्रभु ने भी की। अय नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवामुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तय। कि हे नंद तनुज कृष्णा, मैं इस भौतिक सागर में गिर पड़ा हूँ, आप मुझे उठाइए और अपने चरण कमलों के एक धूलि का कण बना लीजिए। तो हमें कोई बहुत बड़ा भक्त बनने की कामना नहीं करनी है, हाँ मुझे बहुत बिग डिवोटी, बिग डिवोटी। आप बिग डिवोटी हो सकते हैं, भक्ति में बिग नहीं हो सकते। भक्ति में बिग का मतलब है दास दासानो दास, इसलिए वो शिक्षा है। हाँ तो ये अमेजिंग श्रीमद् भागवतम है, जितना अधिक हम अपने मन को लगाते हैं अलग अलग भक्तों से श्रवण करते हैं उसका मनन करते हैं तो अनुभव करते कि ये कृष्ण भावना कितना आनंददायी है, कितनी आनंद देने वाली है। और रियली कृष्ण कथा जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ये व्यंग ना हो, कंटिन्यूस फ्लो, या किसी महान वैष्णव के द्वारा सुनते हैं तो लगता है कि यहाँ ये नित्य रूप से चली रहे, चलती रहे। तो हमें सोचना चाहिए कि जीवन की अवधि बहुत कम है, आयु ऐसे निकलती जा रही है, रोज सूर्य आ रहा है जा रहा है, गर्मी है, बादल, बारिश है, ठंड है, और हम बूढ़े बूढ़े होते जा रहे हैं, हमें अपना बुढ़ापा नजर नहीं आता, ये विशेषता है, सही है कि नहीं? हमें हमेशा दूसरों का बुढ़ापा नजर आता है, ये इल्यूजन है, माया का पर्दा है। हमेशा अपने बुढ़ापे को स्मरण करें, हमेशा स्मरण करें कि मेरी मृत्यु तो नजदीक है, नजदीक आ रही है अभी, बस उससे पहले मुझे ना स्पीड बढ़ा देना चाहिए। जैसे किसी प्रोग्राम में जाना होता है, लेट हो गए तो एक्सीलेटर पे पांव दबाते सीधा स्पीड, वैसे भक्ति देखना कि बस अभी बहुत कम दिन है, सबकी गाड़ियां रफ्तार से जा रही है, कुछ लोग तो अटके हुए हैं, कुछ लोगों को तो स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। तो वैसे ही हमें सोचना चाहिए कि नहीं अभी मुझे, अभी मेरा समय एक्सीलेटर दबाने का है, दबाओ तेजी से भागो, अभी पता नहीं क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी ये वर्णन करते परीक्षित को विदुर और उद्धव का अमेजिंग संवाद, जो हम कंटिन्यूसली सुनेंगे, जिसमें मथुरा और द्वारका की लीलाएं, तो ये लीलाएं बहुत पावरफुल है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। ग्रंथराज